लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका एक ओर कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है तो दूसरी ओर ढांचागत नस्लवाद से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैसलेट ने कहा कि जो लोग अमेरिका में गहराई से जड़ जमाए और समाज के लिए एक बीमारी बन चुके ढांचागत नस्लवाद को खत्म करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाजों को सुना और समझा जाना होगा ताकि देश नस्लवाद और हिंसा के अपने पीड़ादायक इतिहास के चंगुल से बाहर निकल सके। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने एक वक्तव्य में कहा, जो लोग निहत्थे अफ्रीकी अमेरिकन लोगों की हत्याओं पर रोक लगाने के लिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनकी बातें सुनी जानी होगी। जो आवाजें पुलिस हिंसा पर लगाम लगाने की बात कर रही है, उन्हें सुना जाना होगा। विदित हो कि 25 मई को मिनियापोलिस शहर में एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने एक काले अफ्रीकी जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन पर 8 से ज्यादा मिनट तक अपना घुटना सख्ती से टिकाए रखा और समझा जाता है कि इसके कारण फ्लॉयड का दम घुट गया और बाद में पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई। 46 वर्षीय जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अनेक शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, लूटपाट और कुछ तोड़फोड़ भी हुए। उसकी मौत के 15 दिन बाद 9 जून को ह्यूस्टन में उनके परिजनों और विशिष्ट मित्रों ने जॉर्ज फ्लॉयड का अंतिम संस्कार किया। नस्लवाद के विरोध में प्रदर्शन अब भी जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैसलेट ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि जो लोग निहत्थे अफ्रीकी अमरीकी लोगों की हत्याओं पर रोक लगाने के लिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी होगी। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इस सप्ताह लाखों प्रदर्शनकारी कई शहरों और अन्य देशों में सड़कों पर उतरे हैं। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से शांतिपूर्ण रहे हैं और इनमें नस्लीय न्याय की मांग की गई है, लेकिन कुछ स्थानों पर अव्यवस्था और लूटपाट भी देखी गई है। कुछ लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस की हिंसक कार्रवाई भी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार ऐसी कम से कम 200 घटनाएं दर्ज की गई हैं जिनमें प्रदर्शनकारियों को कवर करने वाले पत्रकारों पर शारीरिक रूप से हमला किया गया, उन्हें डराया धमकाया गया या मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा है कि पत्रकारों पर असाधारण रूप से हमले हुए हैं और ये सब इसलिए भी दिल दहलाने वाला है क्योंकि अमेरिका में अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी बुनियादी सिद्धांतों में शामिल है जो कि देश की पहचान निर्धारित करते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में ये गुस्सा ऐसे समय में फूटा है जब कोविड-19 महामारी से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चरणबद्ध ढंग से पाबंदियों को खत्म किए जाने के दौरान कई शहरों में व्यापक स्तर पर प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने से संक्रमणों की दूसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सचेत किया है कि प्रदर्शनकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए हर सावधानी बरतनी होगी क्योंकि दुनिया अब भी वैश्विक महामारी की चपेट में है।
कोविड-19 महामारी से पूरे विश्व में अब तक 75,98,950 लोग संक्रमित हो गए हैं और 4,23,870 लोगों की मौत हो गई है। कोविड-19 महामारी अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है और इस महासंकट से पार पाने के लिए वैक्सीन का होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने गुरुवार 4 जून को एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि वैश्विक एकजुटता की भावना के साथ हर देश, हर समुदाय और हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
गुरुवार को ग्लोबल वैक्सीन समिट के आयोजन का उद्देश्य कोविड 19 की रोकथाम और इलाज करने वाली दवाइयों के लिए सामूहिक रूप से वित्तीय इंतजाम करना, नियमित रूप से होने वाले टीकाकरण कार्यक्रमों को मजबूत बनाना और ऐसी अन्य बीमारियों के लिए संसाधन जुटाना था जिनकी रोकथाम की जा सकती है। कोरोना वायरस के अब तक 64 लाख से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 3,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस कार्यक्रम में वैक्सीनों को मानवीय इतिहास में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अहम मंजिल बताया गया है, जिससे हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने, चेचक का उन्मूलन करने और खसरा जैसी बीमारियों के फैलाव की रोकथाम करने में मदद मिली है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने स्पष्ट किया कि कोविड 19 के लिए वैक्सीन को जनता वैक्सीन के रूप में देखा जाना होगा, एक ऐसी वैक्सीन जो सभी के लिए काम आए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि कोविड 19 का मुकाबला करने के प्रयासों के कारण कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम और इलाज संबंधी सेवाओं में गंभीर बाधाएं खड़ी हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई महीने में 155 देशों में 3 सप्ताह के दौरान एक सर्वे कराया जिसमें ये बात सामने आई है।
कहीं से यूरो, कहीं से पाउंड और कहीं से डॉलर, विदेशों में रहने वाले प्रवासी कामगार अपने मूल देशों और स्थानों पर रहने वाले परिवारों को धन भेजते रहे हैं। इस धन से करोड़ों लोगों को अत्यंत गरीबी से उबरने में मदद मिलती है और अंततः टिकाऊ विकास लक्ष्यों के दिशा में प्रगति होती है। कोविड 19 के कारण इस पर बुरा असर पड़ा है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान निम्न और मध्य आय वाले देशों में विदेशों में रहने वाले प्रवासी नागरिकों ने लगभग 55 अरब 40 करोड़ डॉलर की रकम स्वदेशों को भेजी थी। ये रकम उन लगभग 20 करोड़ प्रवासी कामगारों ने भेजी थी जो 40 देशों में रहकर आय अर्जित कर रहे थे। इस रकम के जरिए उनके लगभग 80 करोड़ संबंधी लोगों की जीविका चल रही थी जो 125 से अधिक विकासशील देशों में रहते थे। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंजू शर्मा।
प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली रकम कम से कम 60 निम्न व मध्य आय वाले देशों के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5% हिस्सा होती है। इतना धन तो उनके यहाँ विदेशी सीधे निवेश या अन्य देशों से आधिकारिक विकास सहायता के जरिए भी नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ होंगबे का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद के समय में आर्थिक हालात अपेक्षानुसार तेजी से सुधरते हैं या नहीं, लेकिन इस वैश्विक महामारी ने प्रवासियों द्वारा अपने परिवारों को रकम भेजे जाने की व्यवस्था की कमजोरियों को सामने ला दिया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि नोवल कोरोना वायरस की महामारी फैलने के बाद प्रवासी कामगारों द्वारा विदेशों से अपने मूल स्थानों को भेजी जाने वाली धनराशि में 20% यानी लगभग 110 से लेकर 445 अरब डॉलर तक की गिरावट आएगी। इसके परिणाम स्वरूप संभवतः करोड़ों लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले जाएंगे और अंततः 2030 का टिकाऊ विकास एजेंडा हासिल करने की रफ्तार पर असर पड़ेगा।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार। तुझसे प्यार मैं प्रभु करूं, तेरी आराधना करूं, तुझसे प्यार मैं प्रभु करूं, तेरी आराधना करूं, तुझसे प्यार मैं प्रभु करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान, तू है महान।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। विश्वव्यापी कैथलिक उदारता संगठन कारितास की भारतीय शाखा कारितास इंडिया ने हाल ही में एक ऑनलाइन बैठक के दौरान भारत के कलीसियाई नेताओं के समक्ष कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान छोटे धारक किसानों और प्रवासियों पर अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए। कारितास इंडिया द्वारा भारत के 18 राज्यों पर किए अध्ययन के अनुसार 80% छोटे और सीमांत किसानों ने कहा कि कोविड 19 के प्रकोप के बाद उनकी आय कम हो गई है। 6 जून 2020 को एक ऑनलाइन बैठक में कारितास इंडिया ने कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान आंतरिक प्रवासियों और छोटे एवं सीमांत किसानों पर अपने 2 अध्ययनों के परिणामों को साझा किया। बैठक में भारतीय कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष एवं मुंबई के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ऑज़वाल्ड ग्रेशियस, प्रांतीय धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के अध्यक्ष तथा संपूर्ण भारत से निर्देशकों के मंच ने भाग लिया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि महामारी के दौरान लॉकडाउन ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा की है, जिसने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है तथा प्रवासियों और छोटे कृषक समुदायों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। कारितास इंडिया के अध्ययन से पता चला है कि सर्वेक्षण में शामिल 95.2% प्रवासियों ने अपनी आजीविका के साधन खो दिए हैं तथा लगभग 10.6% ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया है। जब भारत सरकार ने 24 मार्च को कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी का आदेश दिया तो अप्रवासी मजदूरों सहित लाखों दैनिक वेतन भोगी अचानक बिना किसी आजीविका, भोजन और आश्रय के रह गए थे। अधिकांश प्रवासी मजदूर निर्माण कारखानों, घरेलू काम, कपड़ा, ईंट भट्टों, परिवहन और कृषि क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं। एक अन्य सर्वेक्षण में कारितास इंडिया ने लघु धारक कृषि क्षेत्र पर कोविड 19 के प्रभाव का अध्ययन किया। 80.4% किसानों की आमदनी में भारी कमी आई है। इसके अतिरिक्त उन्हें आगामी फसल के लिए अनिश्चित मौसम का भी सामना करना पड़ रहा है। यह भी बताया गया कि 49% छोटे किसान खाद असुरक्षा से जूझ रहे हैं और 16.5% ने भोजन की कमी के कारण पिछले 10 दिनों में भोजन करना छोड़ दिया है। स्विट्जरलैंड की क्रिस्तीय कलीसियाओं और देश के यहूदी समुदाय ने संयुक्त रूप से शरणार्थियों को समर्पित रविवार को उचित ढंग से मनाने के लिए दीवारों को गिराने तथा समाज में शरणार्थियों के एकीकरण की अपील की है। स्विट्जरलैंड के कैथलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन की वेबसाइट पर उक्त अपील प्रकाशित की गई। अपील में इस तथ्य की प्रकाशना की गई कि दुनिया में आधे से अधिक शरणार्थी बच्चे हैं। अधिकांश माता पिता या रिश्तेदारों के बिना यात्रा करते हैं या उनके भागने के दौरान उनसे अलग हो जाते हैं। उनमें से 56 लाख से अधिक सीरिया के हैं, जिनमें से आधे अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए तथा जॉर्डन, लेबनान, मिस्र, इराक और तुर्की में शरणार्थियों के रूप में पंजीकरण करने पर बाध्य हुए हैं। लगभग 62 लाख सीरियाई अपने ही देश में विस्थापित हैं, जिन्हें मानवतावादी राहत सेवाओं की नितांत आवश्यकता है। यह कहते हुए कि बच्चे मानव समुदाय के भविष्य हैं, ख्रिस्तीय कलीसियाओं तथा यहूदी समुदाय ने राजनीतिज्ञों और सरकारों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रवासी केंद्रों में बच्चों का स्वागत हो, उनके विरुद्ध किसी प्रकार की नजरबंदी या भेदभाव न हो, बच्चों की भाषा में उन्हें पूरी जानकारी मिले, बच्चों की सेवा और समर्थन के लिए योग्य कर्मियों की नियुक्ति की जाए, उनके प्रशिक्षण के लिए इंतजाम किए जाएं तथा परिवार के साथ उनके पुनर्मिलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। भारत ने अमरीकी प्रतिनिधियों को देश में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की जांच करने से रोक दिया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी संयुक्त राज्य अमरीकी आयोग की रिपोर्ट के बाद जांच का फैसला लिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में ख्रिस्तीय, इस्लाम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार होता रहा है। 20,020 की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता का देश बताया गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हम अपने नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर उच्चारण के लिए किसी विदेशी इकाई या सरकार के लिए कोई लोको स्टैंडी नहीं देखते हैं। अमरीकी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक शर्त में हेर फेर कर यह कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता सार्वजनिक कानून और व्यवस्था के अधीन है। आयोग के अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए इस क्लॉज का उपयोग किया गया है। नाइजीरिया के एक गांव पर हालिया हमले के पीछे आतंकवादी समूह बोको हराम का हाथ माना जा रहा है, जिसमें मंगलवार 9 जून को कम से कम 81 लोग मारे गए थे। स्थानीय समाचारों के अनुसार नाइजीरिया के बोर्नो प्रांत स्थित फादुमा कोलोमदी गांव में हमले से बच निकले एक व्यक्ति ने कहा कि आतंकवादियों ने मांग की कि गांववासी अपने हथियारों को उनके सुपुर्द कर दें तथा हमले से पहले उन्हें उपदेश देने की पेशकश की। व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि वे एक धार्मिक उपदेश देना चाहते थे, इसलिए हम अपने हथियार उनके सुपुर्द कर दें, किन्तु कुछ ही क्षणों के बाद उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। गांव पर हुआ हमला लगभग 6 घंटों तक चला, जिसमें 81 लोग मारे गए, 13 घायल हो गए तथा गांव के नेता सहित 7 लोगों का अपहरण कर लिया गया। जाते समय आतंकवादी सैकड़ों गायों और भैंसों को भी लेकर चले गए। बोर्नो प्रांत के राज्यपाल बाबा गाना जुलूम ने गांववासियों की रक्षा के लिए नाइजीरियाई सेना से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। बुधवार को गांव वालों की भेंट कर उन्होंने कहा कि इस्लामिक दल बोको हराम क्रमबद्ध ढंग से नाइजीरियाई गांवों पर हमला करता आया है। उन्होंने कहा, पिछले साल गाजीराम में भी लगभग इतने ही लोग मारे गए थे और अब फिर से हमला किया गया है। यह बर्बर है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि यह हमला बोको हराम और इस्लामिक स्टेट पश्चिमी अफ्रीकी प्रांत द्वारा किया गया था और अपराधियों को ट्रैक कर उन्हें गिरफ्तार या बेअसर करने के लिए कार्रवाई जरूर की जाएगी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड रूल ऑफ लॉ नामक मानवाधिकार संगठन द्वारा विगत 15 मई को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अब तक 600 से अधिक ख्रिस्तीय मारे गए हैं। ईसाइयों को मार डाला जाता है या आग के हवाले कर दिया जाता है, उनके खेतों को भस्म कर दिया जाता है तथा पुरोहितों एवं गुरुकुल छात्रों को अपहरण और फिरौती के लिए निशाना बनाया जाता है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।